તારીખ 12/7/1993 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા હૈદરાબાદમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 64.
ऐसा प्रतिबिंब होने की क्षमता है, तो जैसे परग्नि को वो झेलता है ऐसे स्वग्नि को भी झेल सकता है, क्योंकि प्रतिबिंब तो किसी भी पदार्थ का हो है, प्रतिबिंब तो पड़ सकता है। एक तो स्वच्छता अच्छी है उसकी, दूसरा जो ज्ञान सामान्य है वो हमेशा अविकृत रहता है। ज्ञान सामान्य में तो ज्ञेय की भी पहुंच नहीं, वो हमेशा अविकृत रहता है और वो स्वभाव सदृश है, इसलिए यहां से पता चलता है कि मैं ऐसा हूं। लक्षण जो बोला है वो सामान्य को लक्षण बनाया है, विशेष को लक्षण नहीं बनाया, क्योंकि विशेष तो अनेक प्रकार होता है, विशेष तो एक रूप रहता है नहीं, अनेक रूप हो जाता है, और आत्मा एक रूप है, इसलिए विशेष जो है वो लक्षण के स्थान में नहीं पाया जाता, नहीं देखा जाता। ज्ञान सामान्य तो निर्विकार ही रहता है हमेशा, इसलिए पूरा उल्टा नहीं है। ज्ञान में विभाव तीन प्रकार का है, ज्ञान का विभाव, फिर भी कषाय नहीं होता ज्ञान में, चारित्र में कषाय होता है, ज्ञान में विभाव होता है लेकिन कषाय नहीं होता, इतना फर्क है। तो तीन प्रकार के विभाव में क्या है कि जो मिथ्या ज्ञान है उसमें स्व पर का अविवेक होता है, स्व को स्वरूप में जानता नहीं, पर को पर रूप में नहीं जानता, पर को स्वरूप में जान लेता है और स्व को जानता ही नहीं, ये इनका पहला मूल दोष है। दूसरा दोष इनका यह है, तो पर सन्मुख, उसका जो मुख है वो पर की ओर है, वो पर सन्मुखता भी इसका दोष है, पर सन्मुखता स्वभाव नहीं है, स्वसन्मुखता स्वभाव। तीसरा अल्पज्ञपना है, वो भी इसका विभाव है, स्वभाव। तो वो तीन प्रकार का जो दोष है उसमें से पर सन्मुख से पर के साथ एकत्व हो जाता है और एकाग्रता होती है, उद्योग की चंचलता भी होती है, तो ये सब दोष यहाँ से ज्ञान के कारण भी होता है। तो ऐसे प्रकार के विभाव हैं, फिर भी दूसरे सभी गुणों के परिणमन को देखते हुए एक ज्ञान का परिणमन ऐसा है कि जिससे जीव अपनी जगह से वो आगे बढ़ता है, विकास करता है, प्रगति करता है, मोक्ष मार्ग की ओर जाने के लिए उसको पात्रता प्रकट करने में भी विवेक ही प्रधान कारण है। और जो भी तकलीफ है वो मोक्ष की भूमिका में ही है, आगे जाकर के उतनी तकलीफ नहीं है, मुमुक्षुता पैदा होने में तकलीफ है, और मुमुक्षुता पैदा हुई तो भी जहां तक मोक्ष मार्ग में नहीं आया वहां तक जोखिम है, क्योंकि वो कहां बुलावा में आ जाएगा, कहां विपरीतता कर लेगा, उसको खुद को पता नहीं चलेगा। ऐसा भी हो जाता है, मुमुक्षुता चली भी जा सकती है, समय दर्शन के 11वें में से फिर मिथ्यात्व में आ जाता है, तो वो तो गिरना तो बनता है कहीं से भी, लेकिन मुमुक्षुता तो बहुत कमजोर परिस्थिति है। जैसे बच्चा की परिस्थिति कमजोर है, वाइटालिटी उसकी कम होती है, रेजिस्टेंस पावर उसमें बॉडी का कम होता है, वैसे मुमुक्षुता में कमजोरी बहुत है, और स्पष्ट रूप से उनको जो भी करना चाहिए वो उतनी स्पष्टता में नहीं है, तो असमंजस में बहुत रहता है, कहाँ भूल करे, कहाँ दोष करे, खुद को पता नहीं चले। जो भी तकलीफ है, मुसीबत है, वो मुमुक्ष भूमिका में, फिर आगे जाके जिसने आत्मा को एक दफे अनुभव कर लिया और अनुभव करने का जिसको पद्धति, कार्य पद्धति जिसको मिल गई, उनको तो जाना हुआ रास्ता है और दिखा हुआ घर है, तो रास्ता भी देखा हुआ और घर भी देखा हुआ, उनके लिए उतनी आपत्ति नहीं है जितनी मूर्खों पर। इसलिए शास्त्रों में भी बहुधा उपदेश मुमुक्षों को ही ज्यादा दिया है, ज्ञानियों को इतना उपदेश की आवश्यकता भी नहीं, इतनी जरूरत नहीं जितनी मुमुक्षों को है। इसलिए मुमुक्षों को अधिक सावधान रहना है, अधिक सतर्क रहना है कि कहीं हम नुकसान में नहीं आवे, लाभ थोड़ा हो, देरी से हो तो उतनी मुसीबत उसमें नहीं है, लेकिन नुकसान में पोसाता पोसाएगा नहीं। कम पूंजी वाले को नुकसान नहीं पोसाता, बड़ी पूंजी वाले को थोड़ा नुकसान फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी बात। जो मुख्य गुण है श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, पुरुषार्थ और सुख, ये पांचों का तो संसार अवस्था में विपरीत परिणाम है, बाकी जो शुद्ध परिणाम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे जो मुख्य गुण है वो सलट जाए, इसका परिणाम शुद्ध हो जाए, उसमें से विकृति हट जाए, तो फिर दुख नहीं है जीव को। सुख की परिभाषा तो यह है कि निराकुलता को सुख कहें, आकुलता का अभाव, आकुलता वो दुख का स्वरूप है, निराकुलता वो सुख का स्वरूप है। और शाश्वत माने हमेशा के लिए, कभी भी मुझे दुख नहीं हो, उसी का नाम शाश्वत, कायमी, नित्य। तो शाश्वत सुख की ये परिभाषा है के सर्वकाल के लिए मुझे निराकुल शांति, निराकुल सुख मुझे होता रहे, किसी को शाश्वत सुख कहते हैं। हाँ, पाने का उपाय में तो सारा उसका एक विज्ञान है, सुख पाने के लिए ही सारा विज्ञान है, और ये सब जो शास्त्र है वो उसी विज्ञान के लिए है। नहीं, जरूरत नहीं इतने मुद्दे की जो बात है वो अपन समझ लें, तो फिर सारे शास्त्र में तो क्या है कि अनेक प्रकार की जो विटंबना में पड़े हैं वो सभी विटंबनाओं को हटाने की बातें उसमें आई है, इसलिए ये बड़ा बड़ा वॉल्यूम हो गया है। लेकिन अपने को तो अपनी विटंबना ही देखनी है, मुमुक्षु की भूमिका में जो विटंबना होती है वो होती है अज्ञानी को, संसार को। तो किस प्रकार की है, शास्त्र पढ़ने में अपने को यही देखना है कि मेरी विटंबना किस प्रकार की है और वो कैसे टले, उतना बात उतनी नजर रखें, तो फिर कोई लंबी चौड़ी बात समझने की उतनी आवश्यकता नहीं है। इसलिए खास बात वो है कि मुझे दुख कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या क्या कारण है, जो बात शास्त्र में लिखी है कि जीव को दुख होने का उतना उतना कारण है, उसमें से मेरा कारण कैसा है, किस प्रकार का है, कौन सा है, वो समझ लें। तो दुख है वो एक जीव को दर्द है, तो दर्द को समझें और दर्द मिटाने का इलाज को भी समझें, बस बात खत्म। नहीं, वो भी विटमिना की बात है। तो उसमें ऐसा है कि एक तो सामान्य दर्द तो ऐसा है कि हमें कहीं बातों का समाधान नहीं होता, ठीक है, ऐसा क्यों, जैसे कोई सज्जन आदमी है वो दुखी दिखने में आते हैं, कोई दुर्जन है सुखी दिखने में आते हैं,
अपन को ये प्रश्न रहता कि ऐसा क्यों, और अनेक प्रकार के चित्र विचित्र प्रसंग बनते हैं, तो ऐसी विचित्रता क्यों ऐसा लगते हैं। हम भी एक घंटे के बाद क्या होने वाला है, हम क्या विचार करेंगे, हम क्या करेंगे, हमको पता नहीं है। तो अनेक प्रकार की हमारी जो समस्या है वो समस्या का समाधान नहीं होता है, तो इस असमाधान से असमाधान भी एक आकुलता का कारण बनता है। एक तो वो बात है, दूसरा जो उपाधि हमें नहीं करनी चाहिए ऐसी बिन जरूरी उपाधि हम कर लेते हैं, इसलिए तो उपाधि का जो दुख है वो आकुलता रूप अधिक महसूस होता है। तो उस विषय में हमारी जो विचार शक्ति है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो दिमाग है, वो सही रास्ते पे काम जब नहीं करता है तो अनेक प्रकार की बिन जरूरी उपाधियां भी हम मोल लेते हैं तो दुखी हो जाते हैं। दुख का तो अनेक कारण है, इसलिए जब हमें कोई इस लाइन की शुरुआत करनी है, जैसे आप नए हैं इस लाइन में, शुरुआत ही करनी है तो कहाँ से शुरुआत करें, इस मुद्दे को सबसे पहले हमें विचार करना चाहिए। हाँ, ये प्रश्न तो उनका ठीक है, तो दुख का मूल कारण है अज्ञान। अज्ञान मैंने विपरीत ज्ञान, जो पदार्थ जैसा है उस पदार्थ को उसके असल स्वरूप में, असल रूप में नहीं जान करके अन्यथा जानते हैं, विपरीत जानते हैं, तो दुख यहाँ से पैदा होता है। दुख का मूल कारण तो अज्ञान है, अज्ञान से ही अनेक प्रकार के असमाधान भी होते हैं, इसलिए ज्ञान है वो समाधान करने में मुख्य साधन होने से ज्ञान को ही साधन, अनुभवी जो है पुरुषों ज्ञानियों हैं उन्होंने ज्ञान को ही साधन बनाया है। अब प्रारंभ इस ढंग से करना चाहिए, प्रवेश किस तरह से करना इस लाइन में, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी बातें तो बहुत हैं इसमें, लेकिन मूल मूल बातों को किस तरह से हमें समझना चाहिए कि दुख होता है दूषित परिणाम से। जितने भी दोष के परिणाम हैं वो हमेशा हमेशा आकुलता के साथ अभेद रहते हैं। जैसे एक सिक्का की दो बाजू होती है, वैसे दोष है वो एक बाजू है, दुख है वो वही सिक्का की दूसरी बाजू है। तो दुख का होना और न होने का जो मेन क्राइटेरिया है वो यहाँ से चालू करना होगा कि जो दोष है वो स्वयं दुख रूप है और निर्दोषता है वो स्वयं, इसलिए हमें हमारे परिणमन में, हमारी हालत में, परिणमन मैंने हमारी हालत, जो जहाँ भी जितना भी दोष है उनको मिटा देना चाहिए, तो हमें दुख नहीं होगा, हमें सुख ही होगा। बात तो ये हुई कि दोष का स्वरूप हमें समझना है और निर्दोषता का स्वरूप भी हमें समझना है। कैसे समझना है, कैसे समझना है कि हमारे अनुभव से समझना है। दोष जब हमारे परिणाम में होते हैं, हमारे अवस्था में होता है, तो उसी को देखे बिना उसी को ठीक ढंग से कैसे समझेंगे, इनके कारण को और इनके अनेक प्रकार के जो पहलू हैं, उस सभी पहलुओं से अगर इस विषय को हम समझना चाहेंगे तो हमारे परिणाम को देखना होगा। बिना देखे तो ये भाव समझ में आएगा नहीं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, कुछ भी हो, उपाधि मात्र दुख रूप है। क्या आकुलता ही दुख रूप है? तो आकुलता के साथ दोष है ही, फिर शुभ अशुभ तो इसका एक भंगभेद है। लेकिन जितनी आकुलता उतना दुख, जितनी आकुलता उतनी उपाधि, और आकुलता के साथ दोष है, दोष के साथ आकुलता भी ना भावी है। देखने का मतलब भी यही है कि जो अनुभव में आता है उस पर उपयोग को ले जाना, जो अनुभव चालू है चालू अनुभव पर उपयोग को ले जाना, उसी का नाम अवलोकन है। अवलोकन की परिभाषा क्या है? अब तो थोड़ा बहन जी का ही प्रश्न लेंगे, आपका तो बहुत लेते हैं, तो इस विषय में क्या प्रश्न है? जब इतनी बात स्पष्ट हुई तो इस विषय में और क्या प्रश्न है? फिर उसी लाइन पर आगे बढ़े, क्यों कि जिनकी जो विचारधारा है, जिस एंगल से जो विचार करते हैं, उसी एंगल से उनको समाधान नहीं मिले तो फिर उनको तो आगे की बात साफ नहीं होगी। देखो तो मालूम ही बताया था, पाकिस्तान में थोड़ा बताया था। प्राणी का उद्देश्य तो सुखी होने का है, कोई भी मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, जीव मात्र का उद्देश्य तो सुखी होने का है। लेकिन दोष जनित सुख को सुख मानते हैं, यही हमारी गलती है। इसलिए कहीं भी हमें सुख मिलता नहीं। निर्दोषता से जो सुख का जन्म होता है वही सच्चा सुख है, और वही सुख हमेशा हमेशा के लिए टिकने वाला है, ये शाश्वत सुख है। इसलिए हमारी जो लाइन ऑफ थिंकिंग है वो सदोषता और निर्दोषता से हमारी आकुलता और निराकुलता को समझना है, हमारे अनुभव से, परिभाषा से सिर्फ नहीं समझना है। परिभाषा से पर्याप्त रूप में ये बात इसलिए समझ में नहीं आती कि सुख और दुख ये अनुभव की चीज है, सिर्फ बातों की चीज नहीं है। इसलिए हमारे अनुभव को हमें बराबर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमें क्या अनुभव हो रहा है। इस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आकुलता मोटी मोटी चीज है, तो मोटी तो पहले दिखने में आएगी, सूक्ष्म चीज तो बाद में दिखने में आती है। आकुलता को भी कोई देखने वाला होता है, आकुलता को जो जानता है वो उसमें आकुलता है क्या? तो उसमें नहीं है वो इसका अनुभव करके देखा या ऐसे ही मान लिया, ऐसे ही बोल दिया कि देखने वाले में आकुलता नहीं है, बस ये कार्य पद्धति है, ये ऐसे कार्य पद्धति होनी चाहिए। हाँ हाँ, क्या क्या अनुभव में आता है? मेरे अनुभव में क्या, मैं अनुभव करने वाला अनुभूति स्वरूप ही हूँ, तो मुझे क्या अनुभव होता है? तो एक तो जितनी आकुलता है उसका अनुभव होगा, दुख रूप अनुभव होगा, और एक अनुभव उस आकुलता को जानने वाला ऐसा ज्ञान है, ज्ञान का भी अनुभव होता है, क्योंकि वो तो स्वयं अनुभव अनुभव स्वरूप है ज्ञान, तो अनुभव करना तो उसका धर्म है, आकुलता तो उसमें प्रतिबिंबित होती है वास्तव में। तो ऐसे प्रैक्टिस से थोड़ा ये अवलोकन है वो बारीक होता है, सूक्ष्म होता है, तो आकुलता और निराकुलता दोनों बात समझ में आती है। क्या होता है, कैसे होता है? तो एक रटन है कि मैं आत्मा हूं, मैं साफ हूं, वो तो एक रटन है, वो अवलोकन नहीं है। अवलोकन मैंने क्या, ऑब्जर्वेशन, कि हमें क्या क्या हो रहा है उसको हमें तटस्थ भाव से अलग रह करके देखना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस इसमें से बहुत से बातें समझ में आएगी। तो विचार दूसरी चीज है, रटन दूसरी चीज है, अवलोकन दूसरी चीज है। रटन करना उसको कोई अवलोकन नहीं है, विचार करना वो भी कोई अवलोकन नहीं है। प्रायः क्या होता है कि विचार को ही हम अवलोकन मान लेते हैं, लेकिन विचार तो वही चीज है कि जो अवस्था चल गई उसका बाद में स्मरण हुआ, फिर उस पर हमारा विचार लंबा या थिंकिंग बढ़ गया, तो ये विचार है किंतु वो अवलोकन नहीं है। अवलोकन तो चलती परिस्थिति जो मौजूद है उसी को देखे, उसी का नाम अवलोकन। आत्मावलोकन जो ग्रंथ है दीपचंद जी का, वो तो अनुभव के स्थान में अवलोकन शब्द लिखा है उन्होंने, वहाँ अनुभव लिया है, क्योंकि वास्तव में तो अवलोकन करते करते अनुभव हो जाता है, और वही अवलोकन है वास्तव में। निश्चय अवलोकन तो अनुभव है, आत्मानुभव है, वही निश्चय अवलोकन है। लेकिन ऐसा अनुभव नहीं होता है तो इसका कोई प्री स्टेज होता है, अगले का जो अगला स्टेज होता है वो कैसा होता है? कोई भी हो, लेकिन चालू हो, इसका अवलोकन हो, तो उसका अवलोकन कहा जाता है। लेकिन जो विचार आ गया, जो विकल्प हो गया, बाद में उसको विचार उसको ज्ञान में लेना, वो अवलोकन नहीं है। चलता है उस वक्त ज्ञान में लेना, उसी का नाम अवलोकन है। उतना फर्क है विचार और अवलोकन में, उतना अंतर है। वर्तमान निवास से अर्थात सीधी बात करें तो विचार का विषयभूत भाव या पदार्थ हमेशा परोक्ष रहता है, और अवलोकन का विषय प्रत्यक्ष होता है, मौजूद होता है। दो अंतर है जी। वो अवलोकन नहीं है ही नहीं, वो अवलोकन है ही नहीं, वो विचार है। विचार अलग चीज है, अवलोकन अलग चीज है।
तो
जैसे एक दृष्टांत दे मैं कि आपको गुस्सा आया तो शुरू हुआ उस वक्त तो आपका अवलोकन नहीं रहेगा, लेकिन आपकी समझ में कोई ऐसी बात है कि गुस्सा होना क्रोध होना वो आत्मा को दुखदायक है, इससे नुकसान होता है, आत्मा की शांति है उसका भंग होता है, तो आप सतर्क हो गए, जागृत हो गए कि मुझे क्या क्या हो रहा है। तो जो गुस्से का परिणाम अभी खत्म नहीं हुआ और आपने देखा उसका, उसको देख लिया, अवलोकन कर लिया, तो आपको उसी वक्त एक चमत्कार मालूम पड़ जाएगा कि ये जो गुस्सा में आपका जो रस है बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। जैसे बैरोमीटर का पारा नीचे आ जाता है, ऐसा ही जो रस है, तीव्रता है रस की, वो अवलोकन करते ही टूट जाएगी। इसलिए आप जितना अवलोकन अपने परिणामों का करोगे, हर वक्त जो चलता हुआ दोष है और दोष का जो रस है उसमें कटौती होती रहेगी। दूषित रस कटने से ज्ञान में अधिक निर्मलता आती है और मिथ्या श्रद्धा है उसका अनुभाग है, उसकी ताकत है, शक्ति है, वो कमजोर होती जाती है। नहीं, कोई कोई तर्क नहीं उठा, वो सब विचार है, उसको ही देखो क्या हो रहा है, मुझे अनुभव क्या हो रहा है। हाँ, दोनों कार्य अलग अलग गुण का है। क्रोध क्रोध आपके एक गुण में होते हैं, इसका देखने वाला आपका दूसरा गुण है, दोनों एक गुण नहीं है, इसलिए वो कार्य संभव है। कोई बात नहीं, आप देखो, देखिए मैं दूसरा दृष्टांत देता हूँ कि आप खा रहे हैं, भोजन लेते हैं, कोई अच्छी चीज बनाई है जो आपकी पसंदगी की और बढ़िया से बढ़िया अच्छी बनाई है, रस से खाते हैं अच्छी चीज, उस वक्त आपको कोई बातें कराते हैं तो आप ये कहेंगे कि इस वक्त बातें रहने दो, मुझे खाने दो। क्यों? कि आपके खाने के रस में दूसरी बातों से डिस्टर्बेंस आता है, तो डिस्टर्बेंस होने से क्या है कि आपका रस भंग होता है जो आप चाहते नहीं। इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई जब अच्छी तरह खाना खाते हो तो दूसरी दूसरी बातों इस वक्त नहीं चलनी चाहिए। इसमें खास करके जो बातें पसंद नहीं हो ऐसी बात तो होनी ही नहीं चाहिए। घर पे भी ऐसा होता है ना कि कोई ऐसी घटना होती है और कोई खाना खाने को आते हैं, बोलते हैं खाना खाने के पहले या खाते वक्त कोई बात नहीं कहनी है, बाद में कहेंगे। क्यों? कि रस भंग हो जाता है। तो एक कसाई भी दूसरी कसाई को मारती है, मारती है कि नहीं मारती है, ये रस आना भी एक कसाई है। एक कसाई भी दूसरी कसाई को तोड़ती है, तो ये तो ज्ञान बीच में आया, जिसमें कसाई नहीं है वो तो कसाई रस को तोड़ेगा ही तोड़ेगा, तो उसका दुश्मन है। इसलिए ये ज्ञान है जो काम करता है साधन रूप से, ऐसा काम कोई नहीं करता। तो जिसको पूर्ण सुखी होना है और जिसको निर्दोष सुख की प्राप्ति चाहिए, उनके लिए इसी उद्देश्य से होने वाला जो अवलोकन है, ये तो उद्देश्य पूर्वक हो गया ना, तो ये बहुत कामयाब होता है, उसमें बहुत सफलता रहती है। ऐसे ही अवलोकन करते रहे बिना उद्देश्य, ऐसी बात ये नहीं है, ये उद्देश्य पूर्वक परिचय तो होती है और जितना भी उसका सहवास होता है उतना परिचय बढ़ता है ना।
व्यक्ति का परिचय कैसे बढ़ता है कि जितना भी साथ में रहना होता है, क्योंकि साथ में रहने से अनेक प्रकार के प्रसंग बनते हैं, तो किस प्रकार में व्यक्ति कैसा वर्ताव करती है, किस प्रसंग में कैसा वर्ताव करती है, उसी तरह उसका परिचय होता है और पहचान, ज़्यादा घनिष्ठ परिचय से उसकी पहचान पूरी पूरी हो जाती है। वैसे ये अवलोकन है वो अपना परिणामों का एक सहवास है। क्या अब देखिए, हमारे परिणाम हमारे स्वयं को छोड़ करके इधर उधर ही चलते रहते हैं, अन्य पदार्थों में अन्य विषयों में ही हमारे परिणाम चलते हैं। तो पहला फर्क क्या हो गया कि पहला फर्क ये हो गया कि इधर उधर जाने के बजाय हम उधर इधर आए। एक तो मोटा फर्क क्या हो गया कि बजाय इधर उधर जाने के पहले हम इधर ही देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है, हमें क्या अनुभव हो रहा है। अब हमारे परिणमन में चारित्र गुण का जो परिणमन है उसमें अनेक प्रकार का राग द्वेष मोह, अनेक प्रकार के जो विभाव हैं, विकार हैं, वो चल रहे हैं। हमारे जो ज्ञान गुण है, दोनों आत्मा की प्रॉपर्टी है, उसका परिणमन जानने का और अनुभव करने का हो रहा है। कल तक देवसन भाई ये कहते थे कि जानने का तो समझ में आता है लेकिन वेदन समझ में नहीं आता, अनुभव समझ में नहीं आता। क्यों ऐसा क्यों होता है कि जानना है वो स्थूल पर्याय है, क्योंकि वो ज्ञान का बहिरंग है, तो बाह्यंग तो अपीयरेंस है, और जो वेदन है वो ज्ञान का अंतरंग है। तो जिसका ज्ञान सूक्ष्म होता है उसको ही वो नजर आता है, उसको ही जानने में आता है, उसको तो वेदन होते हुए भी जानने में नहीं आता है, क्योंकि वो सूक्ष्म है और अंतरंग में है। तो इसलिए हम जो अंतरंग में नहीं जा सकते, इसका कारण क्या है कि हमारा अवलोकन अपर्याप्त है, अवलोकन होते हुए भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो अनुभव तो चारित्र गुण के विभावों का भी होता है और अनुभव ज्ञान का भी होता है। अब हमारा परिचय बढ़ा, अनुभव करने का परिचय बढ़ा, तो परिचय से क्या एक निष्कर्ष निकलता है, उसमें से एक नई चीज पैदा होती है, वो कौन से होती है कि भले ही विकार अनेक प्रकार के हो, विकार का स्वभाव क्या, स्वभाव मैंने स्वभाव, इसका स्वभाव क्या, और ज्ञान है भले ही जानता है भले ही वेदन करता है लेकिन इसका स्वभाव क्या, विभाव स्वभाव और स्वभाव स्वभाव आत्म स्वभाव, इसकी पहचान बिना अवलोकन कभी हो सकती नहीं। और स्वभाव और विभाव के बीच में भेद ज्ञान, प्रयोगात्मक भेद ज्ञान होने के पहले ये अवलोकन इसका प्री स्टेज है। जिसको पहला स्टेज नहीं होता है उसको दूसरा स्टेज कहां से आएगा। और स्वानुभव तो ये भेद ज्ञान के प्रयोग का फल स्वरूप होता है, ये तो आगे का स्टेज है। तो सम्यक दर्शन और स्वानुभव जो है वो तो दूर की चीज रही। तो जिसका अवलोकन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उसको स्वभाव विभाव की पहचान नहीं आएगी। धर्म के क्षेत्र में बुलावा कहाँ होता है कि जो शुभ परिणाम है, पूजा भक्ति शास्त्र स्वाध्याय व्रत नियम संयम में जो भी शुभ परिणाम है, उनका स्वभाव मालूम नहीं है अपने को, और आकुलता उस वक्त थोड़ी कम होती है अशुभ के मुकाबले में, अच्छा लगता है, थोड़ी शांति भी लगती है, क्योंकि वो कृत्रिम शांति है, आत्म शांति नहीं। इसलिए स्वभाव नहीं जानने के कारण विभाव का निषेध हमें नहीं आता। गाथा कौन सी चलती है सुबह, एक कण अणु मात्र भी राग आदि नो, ऐसा क्यों लिया कि तुम इसका स्वभाव को जानेगे तो एक कण भी तुम चाहोगे नहीं।
विष्टा का ढेर तो कोई नहीं चाहेगा, लेकिन एक कण को चाहेगा तो क्यों, गंदी चीज है। ऐसे विभाव है, विकार है, वो उसमें भाव मलिनता है, ये द्रव्य मलिनता है, ये भाव मलिनता है, इसका भी एक कण पहचान करने वाले तो चाहेगा नहीं, इसलिए अणुमात्र शब्द लिया है। अणुमात्र शब्द क्यों लिया, कि ये मलिन है, दुख रूप है, दुख का एक अंश भी हमें नहीं चाहिए, मलिनता का भी एक अंश हमें नहीं चाहिए, तो मलिनता की पहचान नहीं है। हम कहेंगे कि राग है वो दोष है, ऐसा कहेंगे, द्वेष है वो दोष है, गुस्सा है वो दोष है, क्रोध दोष है, मान दोष है, मायाचार दोष है, लोभ दोष है, लेकिन मलिनता कौन सी है, मलिनता देखी कि नहीं देखी, नहीं देखी, क्योंकि वो सापेक्ष है, पवित्रता जो देखता है वो मलिनता को देखता है, जो मलिनता को देखता है वो पवित्रता को देखता है, सापेक्ष परिणाम है, शुद्धि अशुद्धि सापेक्ष है, शुद्धि अशुद्धि को हो या पवित्रता मलिनता को भाव की, तो ये मलिनता समझ में आती है तो उसका एक कण से भी हटेगा। जैसे हमारे शरीर में पैदा होने वाली निष्ठा, हम शरीर के ऊपर एक कण भी उसका पसंद, एक जगह पे पसंद नहीं करेंगे, कोई स्थान में, क्यों, तो मलिनता है बस। ऐसे ये भाव मलिनता का एक कण भी अणुमात्र भी जो स्वीकार करता है, आचार्य महाराज कहते हैं कि वो ज्ञानी नहीं, वो अज्ञानी है, यही कारण है इसका कहने का। वरना तो किसी को भारी भारी लगे कि हमारे तो राग होता है सतत धारा प्रवाह, और आचार्य महाराज कहता है कि अणुमात्र नहीं हुआ, अरे भाई साहब ये कैसे बनेगा, हो ही नहीं सकता, असंभव लगेगा, वो तो वो बात वहां नहीं है, है? उसकी मलिनता और उसका दुख की पहचान हो गई तो वहां उसका निषेध चालू हो जाएगा। हाँ, उद्देश्य है क्या, शाश्वत सुख का उद्देश्य है हमारा, हमेश के लिए हमें सुखी रहना है, थोड़े काल के भी थोड़ा काल भी हमें दुख नहीं चाहिए, ऐसा जिनका उद्देश्य हो ऐसा जीव ही इस लाइन में प्रवेश करने के लायक है। जैसे आपके शिक्षा में भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, जो हायर डिग्री होती है उसमें क्या होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते हैं, वो एंट्रेंस में पास होते हैं उनको बिठाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं और भी जो अच्छी अच्छी डॉक्टरेट की डिग्री हो कोई भी, तो उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते, इसमें भी ऐसी बात है कि किसकी एंट्री होती है इधर, कि जिसका उद्देश्य शाश्वत सुख का हो उसी को ही इस लाइन में प्रवेश मिलता है, दूसरे को इस लाइन में प्रवेश नहीं मिलता। इसलिए गुरुदेव ने वो सूत्र दिया है कि जो पूर्णता का लक्ष्य वाला हो उसी को ही वास्तविक शुरुआत होगी, दूसरों को शुरुआत होगी लेकिन काल्पनिक होगी, मनगढ़ंत होगी और कल्पना विहार से आगे बढ़ेगा, काय में आगे बढ़ेगा, कल्पना विहार होगा उसका, वो तो हवा में चलता है, उसके चलने में कोई जमीन नहीं है, इसके पास कोई ठोस भूमिका नहीं है। तो एक तो क्या है, प्राइमा फेसी बात उसमें वो है कि आत्मा में अनंत सुख भरा है, इसलिए आत्मा को जानना जरूरी है, आवश्यक है। आत्मा को कैसे जाने, अब दूसरा सवाल वो रहा, तो आत्मा को अनुभव से जाने, एक अनुभव से जानने लायक चीज है। क्या? फिर से, आत्मा एक ऐसी चीज है कि जो अनुभव से जानने लायक है। जैसे खाने की चीज है, वो खाने से जानने में आती है, देखने से जानने में नहीं आती। काला जांबू होता है इसलिए क्या स्वादिष्ट नहीं होता? और रसगुल्ला होता है वही स्वादिष्ट होता है, ऐसा थोड़ा होता है कि इससे कोई कलर से मतलब नहीं। जैसे मिठाई का कोई कलर से मतलब नहीं होता, ऐसे आत्मा का कोई देखने से, जानने से, कोई विचार करने का कोई मतलब नहीं रहता, अनुभव करने से मतलब होता है। और सुख भी अनुभव की चीज है, विचार की चीज नहीं। तो अनुभव से वो जाना जाता है। अब ये प्रश्न आपका हो सकता है कि अनुभव कैसे हो, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न तो वही आएगा कि अनुभव कैसे होता है। तो अनुभव करने की कार्य पद्धति से होता है। क्या? हमारी आत्मा हमेशा हमेशा निरंतर किसी न किसी पदार्थ का अनुभव कर ही रही है कि नहीं कर रही है? कर ही रही है, ठीक है, वो तो फैक्ट हो गया आपके पास। अच्छा, अब हमें देखना है कि हम किस किस चीज का अनुभव करता है, क्या क्या अनुभव करता है, वो उसको ऑब्जर्व करना है। जब अनुभव के विषय में हमारी दृष्टि पैनी होगी, सूक्ष्म होगी, तो इसका अनुभव करने के लिए अनुभव का स्टडी करना पड़ता है। इसको स्टडी कहते हैं, अभ्यास कहते हैं, कि जब अनुभव हमें हो ही रहा है तो क्या क्या चीज का अनुभव हो रहा है, कैसे कैसे अनुभव हो रहा है, उसी को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, अवलोकन कहते हैं। तो उसमें जिस ज्ञान से हम जानते हैं, जिस ज्ञान से हम विचार करते हैं, वो ज्ञान का भी एक अनुभव होता है। ज्ञान का अनुभव किसको होता है? कि ज्ञान को ही ज्ञान का अनुभव होता है। तो ये जो शास्त्र है, ये थोड़ी बहुत गाइडलाइन के लिए है, ये सब गाइड है, लेकिन चलना है हमको खुद को। यहां से तो गाइडेंस मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन चलना है हमको, स्वयं को चलना है। तो वो तो डायरेक्शन देंगे, ऐसे चलो, ऐसे नहीं चलो, ऐसे चलो, ऐसे नहीं चलो, उतनी बात वहां से मिलेगी। तो वो बात यहां से मिलेगी शास्त्र में से, कि ज्ञान स्वयं अनुभव करने वाला है और ज्ञान स्वयं अनुभव में आने वाला भी ज्ञान ही है। क्या? फिर से, अनुभव करने वाला भी ज्ञान है और अनुभव में आने वाला भी ज्ञान है। जरा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये बात आपको सही मालूम पड़ेगी। तो इसके लिए थोड़ा अपने को स्टडी करना पड़ेगा भीतर में, कि क्या कहने वाला कहता है ऐसा हमें मालूम पड़ता है क्या। जैसे एक गाइडेंस का आपको यही बात भी मिलेगी इन शास्त्रों में से, कि तुम देह स्वरूप नहीं हो। क्या? जो शरीर मिला है वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ऐसी एक बात मिलेगी यहाँ से। अच्छा, दूसरी बात वो भी मिलेगी कि तुम्हें अनेक प्रकार के जो राग होते हैं, इच्छाएं होती है, हमेशा चालू रहती है, एक पीछे इच्छा कहो, राग कहो, तो ये शास्त्र ऐसा भी कहेगा कि ऐसा भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है। शरीर स्वरूप तो तुम नहीं हो, इच्छा स्वरूप भी तुम नहीं हो, किंतु तुम ज्ञान स्वरूप ही एक आत्मा हो। इतनी गाइडेंस यहां से मिलेगी और इतनी गाइडेंस पर्याप्त है। इस लाइन में आने वाले को ये तीन बात पर्याप्त है। इसमें दो बात तो अपने को फैक्ट रूप से मिलेगी कि अभी हम क्या अनुभव कर रहे हैं कि मैं ऐसा शरीर वाला मनुष्य हूं। ये तो अपने हरेक के अनुभव में बात आती है कि मैं तो ऐसा हूं, तो जितने जैसा भी शरीर हो, छोटा मोटा, दुबला पतला, जैसा भी हो। दूसरा ये भी अनुभव में आता है कि जैसा जैसे मैंने इच्छाएं राग होता है वैसा मैं हूं। जैसे किसी को गुस्सा की प्रकृति हो तो क्या, ये तो मेरा स्वभाव है, क्या कहेंगे गुस्सा वाला, क्या कहेंगे? जैसे कोई बात बात में ऐसा, क्या कहते हैं आप, आपकी भाषा में वो रिसाई जमाने हो कैसे हैं, रुट जाते हैं, रुटने वाले प्रकृति होते हैं, तो बात बात में रुट जाते हैं, नहीं खाना नहीं खाएंगे, हम बोलेंगे नहीं, हम बात करेंगे नहीं, क्या ऐसा होता है ना, रुट जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हो तुम, मेरा स्वभाव ऐसा ही है, मतलब मैं ऐसा हूँ, मेरा स्वभाव मैंने, मैं ऐसा हूँ, ऐसा जिसकी जिसकी जैसी दूषित प्रकृति है, ये सब दोष है। तो जीव अपने को देह स्वरूप और दोष स्वरूप ही मान करके ही अपना जीवन गुजारता है। ये शास्त्र ऐसा कहता है कि तू, तेरा यही गलती है, दो में से एक भी तेरा स्वरूप नहीं है, तो फिर तेरा स्वरूप क्या है? तो फिर ज्ञान स्वरूप ही तुम हो। तो अब हमें क्या करना है कि ये बात तो हमारे अनुभव में आती है कि मैं देह स्वरूप हूं और मैं दोष रागादी स्वरूप हूं, ऐसा तो मुझे महसूस होता है। लेकिन कहने वाला ये कहता है कि तेरा ये अनुभव है वही गलती है, ये तेरा अनुभव ही तेरे दुख का कारण है, क्योंकि ये झूठा अनुभव है। वास्तव में तो ज्ञान स्वरूप है, ये वास्तविक तेरा स्वरूप है, तो ज्ञान तो होता है मुझे, तीनों चीज उपस्थित है। अब क्या है, देह भी मौजूद है, इच्छाएं राग भी मौजूद है और ज्ञान भी मौजूद है। अब मैं दो को अपना स्वरूप अनुभव करता हूं, तीसरा होते हुए भी मैं क्यों नहीं अनुभव करता? अगर कोई बुद्धिमान होता है तो उनको ये समस्या खड़ी हो जानी चाहिए कि जब तीनों चीज उपस्थित है और दो के रूप में तो मैं मुझे अपने आप को अनुभव करता हूं, तो तीसरी चीज उपस्थित होने पर भी मैं उसको क्यों छोड़ देता हूं? हाँ, तो इसलिए अब हमें थोड़ा ध्यान से ये देखना है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, वो काय में होता है, ज्ञान में होता है, या सिवा ज्ञान कोई अन्य जगह होता है? ज्ञान में अपनत्व आया तो बात बिल्कुल सरल गई, क्योंकि वास्तविकता है ज्ञान ही अपना स्वरूप है। क्योंकि देह छूटता है, ज्ञान नहीं छूटता है, दोष छूटता है, राग छूटता है, इच्छा छूट जाती है, ज्ञान नहीं छूटता है। युक्ति से तो ये बात सिद्ध होती है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं, इसके लिए लॉजिक तो मिल ही जाता है। अब जो है हमारे जो अनुभव की जो प्रैक्टिस है कि मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं, ये प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ानी चाहिए। तो आत्मज्ञान करने के लिए, आत्मानुभव करने के लिए या शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए को ये अनुभव की जो कार्य पद्धति है, इस अनुभव की कार्य पद्धति से ही अनुभव की उपलब्धि है, आत्मानुभव की उपलब्धि है। दूसरा जो भी रास्ता है वो सही रास्ता नहीं है। हाँ, तो ये कहेंगे कि तुम सत्संग करो, तुम शास्त्र पढ़ो, तुम मंदिर आओ, तो ये अनुभव की कार्य पद्धति पर आने के लिए बात कही है, लेकिन ये कोई सही साधन नहीं है, वो साध्य भी नहीं है। कल बात चला था कि सत्संग है वो साधन है, साध्य नहीं है। घर पे चल रहा चले थी तो साध्य नहीं है, एक साधन है बीच में। हमको अनुभव की कार्य पद्धति मालूम नहीं है तो समझने के लिए एक बीच में साधन है, क्योंकि हम अनजान हैं, हैदराबाद में आए नहीं, तो आपके घर में पहुंचने के लिए कहीं लोगों को पूछना पड़ेगा, वरना सारे दिन भटकते रहेंगे, पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि देखा नहीं है हमने कहाँ से चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, बस उतनी बात है बीच में। तो इसके लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, ऐसी बात नहीं। अनुभवी के साहित्य इतना पड़ा है, बहुत पड़ा है, इसमें से हम समझ सकते हैं, पर इससे ज्यादा कोई समझना चाहे तो ऐसे कोई अनुभवी पुरुष है इनके पास समझ ले, बस बात खत्म।
तैयार
उसी वक्त देखना कि क्यों हुआ ऐसा, क्या कारण हुआ, उसी वक्त देखना पड़ेगा। हर वक्त तो एक सर के कारण नहीं होते, उस वक्त देखना पड़ता है। वास्तविक तौर से करे तो बहुत फर्क पड़ता है, वेद ज्ञान की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ज्ञान हुए सो मैं हूं और रागादि भाव देहादि मैं नहीं हूं, ऐसा विधि निषेध चालू हो जाता है और उसकी प्रैक्टिस होने से आगे जा करके अनुभव हो जाता है। वेद ज्ञान से ही अनुभव होता है, दूसरा तो कोई अनुभव के लिए कोई कारण हो ही नहीं सकता। सारा समय सार में सभी अधिकार में आचार्य महाराज ने भेद ज्ञान की बात कही है। कॉमन फैक्टर कौन है सारे समय सार में, चाहे बंध अधिकार हो चाहे मोक्ष अधिकार हो, चाहे आश्रव अधिकार हो चाहे समर अधिकार हो, जीव अधिकार हो या अजीव अधिकार हो, बात तो भेद ज्ञान की करते हैं, उसकी बात करते ही नहीं समय सार, क्योंकि अनुभव करवाना है। અવલોકન વગર તો ચાલે જ છે ને, વિકલ્પ બધા વિકલ્પો અત્યારે જે ચાલે છે તો અવલોકન વગર જ ચાલે છે। અવલોકન તો એક જ્ઞાનની પર્યાય છે, જેમાં કંઈક જાગૃતિ વિશેષ છે। આત્મજાગૃતિ એ અવલોકનની પર્યાય છે, અવલોકન છે તે આત્મજાગૃતિની પર્યાય છે। કે મેં મુજે નુકસાન કરના નહીં ચાહતા, ऐसी जागृति इसमें है। क्या मुझे ना आत्मलाभ हो, मुझे कोई नुकसान न हो, ऐसी जागृति, उसी को ही आत्म जागृति कहने में आती है। तो ये अवलोकन से आत्म जागृति होती है तो अवलोकन होता है। बिना आत्म जागृति अवलोकन करना चाहेंगे तो भी होगी नहीं, ऐसी बात है। कुदरती ये पेपर का नाम भी यही सिलेक्ट होकर के आया दिल्ली से, पहले दूसरे छह भेजे थे उन लोगों ने पास नहीं किया, कोई रजिस्ट्रेशन तो कॉमन नेम में होता नहीं, अनकॉमन नाम चाहिए, तो फिर दोबारा छह नाम भेजे, उसमें भी प्रायोरिटी देना पड़ता है, ये नाम सिलेक्ट नहीं हो तो सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, छः देना पड़ता है। आत्म जागृति सिलेक्ट होकर क्या है, डेढ़ साल लगा रजिस्ट्रेशन, डेढ़ साल पहले एप्लीकेशन दिया था। अवलोकन करवाने के लिए अगर आप सत्संग में आते ही नहीं तो अवलोकन करना वो बात आपके जानने में कहां से आती, बताइए। आप अपने जीवन को देख लीजिए, दूसरे का नहीं देखना है, अपना जीवन को देखना है कि ये बात हमें समझने की मिली कहां से मिली, तो सत्संग से मिली, बिना सत्संग ऐसी बातें मिलती नहीं। बाह्य साधना, नियंत्रण साधन, और बाह्य साधन अंतरंग साधन हो तो कहा जाता है, अंतरंग साधन ही नहीं हो तो बाह्य साधन, बाह्य साधन कहने मात्र है, वो है ही नहीं वास्तव में। और कृपाल गुरु ने 254 में क्या कहा कि जीव का सबसे बड़ा कोई दोष है तो उसको मुमुक्षुता नहीं आई, वही सबसे बड़ा दोष है। कृपालु देव ने ये नहीं कहा कि तुम गुस्सा करता है तेरा बड़ा दोष है, तुम चोरी करता है तुम्हारा बड़ा दोष है, तुम फलाना बात करता है तुम्हारा बड़ा दोष, ऐसा कहीं नहीं कहा। दोष के तो बहुत बहुत से परिणाम होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन सही मुमुक्षुता नहीं आई यही जीव का सबसे बड़ा दोष है, ऐसा लिखा 254 पत्र में है। तो सबसे बड़ा दोष तो ये बतलाया कि मुमुक्षुता ही नहीं आई। अच्छा, मुमुक्षुता ये आई कि मोक्ष के लिए हमें कुछ कर लेना है, बस वहां से मुमुक्षुता चालू होती है। पूर्ण शुद्धि, पूर्ण निर्दोषता, पूर्ण सुख, इसकी जो भावना है, इसका जो ध्येय, वही लक्ष्य जीवन में, तो मुमुक्षुता का प्रारंभ हुआ। तो दूसरा उन्होंने ये कहा कि जब मुमुक्षुता का प्रारंभ होता है तो भी स्वच्छंद पूरा नहीं जाता, जीव अपनी कल्पना से ये काम करना चाहता है कि ऐसा करना है मुझे, मैं तो ऐसा करूँगा। कोई कहेंगे कि मैं तो पूजा ज़्यादा करूँगा, कोई कहेंगे कि मैं तो भक्ति ज़्यादा करूँगा, कोई कहेंगे तो मैं तो शास्त्र ज़्यादा पढ़ूंगा, कोई कहेंगे नहीं मैं तो त्याग ज़्यादा करूँगा। ऐसे धर्म के क्षेत्र में अपनी मनमानी सब कर लेते हैं। तो कृपागुरु ने बोला कि ये तेरा स्वच्छंद है, स्वच्छंद को हानि करने के लिए, मिटाने के लिए तुम अपना दोष को देखो, दोष को विचार करो। दोष का ऐसा नहीं कहा, क्या कहा? देखने का कहा, विचार करने का नहीं कहा, तो अवलोकन करने का कहा कि नहीं कहा? जी हाँ, इसी उद्देश्य को, इस उद्देश्य लेकर के तो देखते हैं। देखने भी हमारा उद्देश्य क्या है? देखने का उद्देश्य नहीं है, मिटाने का उद्देश्य है। इसलिए इस उद्देश्य से जब हम देखते हैं तो हमारे दोष अवश्य जाएंगे, जाएंगे और जाएंगे, और सबसे बड़ा दोष जो स्वच्छंद है वो जाएगा। फिर उन्होंने तीन बात लिखी है कि जिसका स्वच्छंद कुछ मात्रा में कम हुआ हो, उनके तीन प्रकार के जो दोष होते हैं वही आत्मस्वरूप को पहचान करने में बाधक होते हैं, अनुभव में बाधक होते हैं। उसमें इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा, इस सुबह की गाथा आ गई, अल्प भी, अणु मात्र भी, क्यों? कि ये दोष जनित सुख है, लौकिक सुख है, सब दोष जनित होते हैं। तो मलिनता की अल्प भी इच्छा है, तो इस मलिन सुख की इच्छा है उसको ये चीज मिलने वाली नहीं है, फिर आप अभिप्राय पूरा का पूरा बदल। दूसरा, कि सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि ये पहचान से आती है, बिना पहचान आती है। तीसरा, पदार्थ का आत्मस्वरूप का निर्णय करना। तो दूसरा है वो पहला संकेत है, तीसरा है वो दूसरा संकेत है, बाद में तीसरा संकेत तो उसके साथ बंधा हुआ है, प्रतिबद्ध है, आएगा ही आएगा। पहले मुमुक्षुता की बात ली, फिर पहले संकेत की बात ली, फिर दूसरा संकेत की बात लिया, तीसरा संकेत तो इसके साथ बंधा हुआ है। उनका एड्रेस ले लेना, आप जाकर जो पुराने हैं वो अभिप्राय का आर्टिकल देख लेना, थोड़ा उनके लिए दिमाग जिसका अच्छा रहे।